नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद ने व्यापारिक नौवहन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी। ये विधेयक मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का स्थान लेगा। ये विधेयक भारतीय नौवहन के विकास और भारतीय व्यापारिक समुद्री क्षेत्र के कुशल रखरखाव को सुनिश्चित भी करेगा। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में समुद्री क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। इस विधेयक में सुरक्षा के विस्तृत पहलू शामिल किए गए। संसद ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने पिछले सप्ताह इस विधेयक को पारित किया था। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना और गोवा राज्य की विधानसभा में सीटों का पुनर्समायोजन करना है। लोकसभा ने कल राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करने और उनके कामकाज को विनियमित करने का प्रावधान करता है। वहीं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 खेलों में डोपिंग पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 खेलों और भारत की भावी पीढ़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
भारत नीति और स्पोर्ट्स बिल, एंटी डोपिंग बिल, ये काफी महत्वपूर्ण बिल थे कि जिसके ऊपर आज डिस्कशन में अगर ज्यादा पार्टिसिपेशन अगर होते, विपक्ष भी इसमें डिस्कशन करता, तो मुझे लगता है कि हम हमारे देश के खिलाड़ियों को अच्छी तरह से गाइड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा किया नहीं। उसके बावजूद भी आज लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है और उसके रिजल्ट जो आने वाले दिनों में, सालों में हमें दिखेंगे, काफी महत्वपूर्ण रहे।
निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी दावों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक की श्रृंखला में आयोग ने कहा कि मतदाता सूचियां लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी दस्तावेज और गणना के प्रमुख निष्कर्ष भी साझा किए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के साथ उसका उपयोग भी बढ़ाया जाए तो भारत एक ऊर्जा निर्यातक देश बन सकता है। श्री गडकरी कल विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर पुणे में बायोवर्स पहल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन क्रांति आयात कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री गडकरी ने कहा कि अब केवल चीनी उत्पादन पर निर्भर रहना व्यवहारिक नहीं है।
मैंने कहा हमारे यहाँ सब शुगर फैक्ट्री वालों को बॉयलर में बगास जलाने के बजाय बगास से सीएनजी बनाओ बायोडाइजेस्टर में डालकर, और सीएनजी के बजाय अगर आगे चल जाए तो हाइड्रोजन बनाओ। हमने अभी रिसेंटली हाइड्रोजन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया 10 रूट पर। तो हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर, और हाइड्रोजन के कारण जो ग्रीन हाइड्रोजन है, मुझे लगता है कि हमारे देश की तस्वीर बदल जाएगी।
भारत ने संभावित परमाणु धमकी पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा है कि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारत के सभी आवश्यक कदम जारी रहेंगे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में भेजने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में समस्या के बहुत गंभीर होने के कारण ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुत्तों के काटने और रेबीज को नियंत्रित करने के लिए आवारा कुत्तों की नसबंदी कर स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में भेजने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रीय उत्सव तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मनाया जाएगा। ये उत्सव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु वन विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। भारत में 33 हाथी अभयारण्य और 150 चिन्हित हाथी गलियारों में विश्व के लगभग 60% जंगली हाथी रहते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।